पृष्ठ 12। समकालीन परिवेश का रचनाकार मोहन राकेश। जीवन संभावनाओं का दूसरा नाम है और मनुष्य है अनगिनत संभावनाओं की बैसाखियों के सहारे थम थम कर चलने वाला हिम्मतवर सैलानी। जन्म के प्रारंभिक क्षण से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक की सारी यात्रा अनेक रुचियों, भावों और प्रतिक्रियाओं की एक ऐसी परिणति है जिसकी गहराइयों में सब कुछ ऐसे समा जाता है मानो जन्म मिला ही इसलिए है कि उसे अपने लिए सब कुछ समेटकर उसी में विला जाना है जहां स्याह अंधेरा है। यदि यह अंधेरा न होता तो समूची मानव सृष्टि का अस्तित्व या तो एक प्रश्न बनकर रह गया होता या एक बेजुबान रेत का ढेर। यो रेत भी अंतः सलील है किंतु कब? अज्ञेय के शब्द उधार लेकर कहूं तो कह सकती हूं कि अरे अंतः सलील है रेत, अनगिनत पैरों तले रौंदी गई अविराम, जहां भी जिसने कुरेदा नमी पाई और हुआ रस संचार। कुरेदना आवश्यक है क्योंकि उसके बिना न तो कुछ उपलब्ध होता है और न किन्हीं संभावनाओं का जन्म ही संभव है। ध्यान से देखें तो प्रत्येक कलाकार एक संभावना के साथ धरती पर आता है और धरती जो वत्सला है उसे अपने खाद पानी से सींच कर न जाने कैसे कैसे बड़ा करती है। जब सामान्य व्यक्ति के जन्म पर इतना बड़ा आयोजन होता है कि उसे भावी के महत आयोजना का साझीदार मान लिया जाता है तो वह कलाकार जो जन्म लेकर न केवल अपने निजी परिवेश को एक नई चेतना देता है वरन समूची मानवता, मानवीय संबंधों और मूल्यों का अपने ढंग से पुनर्वेशन करता है, अपने लिए एक मार्ग चुनता है, उसे केवल उसकी जन्म विवरणिका के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है? उसकी पहचान उसकी व्यक्तिगत रुचियों, आदतों और प्रतिक्रियाओं से तो होती ही है, उसे उसके परिवेश और सृजन के सहारे से भी समझा जा सकता है। व्यक्ति वह नहीं जो वह बाहर से दिखता है, अपितु असली व्यक्ति वह है जो आदमी नुमा शक्ल का खाल ओढ़कर अपने भीतर एक आदमी को लिए चलता है। यह तथ्य सामान्य व्यक्ति से लेकर कलाकार तक पर लागू होता है। आधुनिक जीवन की विसंगतियां तो इस तथ्य को और भी प्रमाणित कर देती हैं। मनुष्य लाख कोशिश करे परंतु वह आंतरिक पृष्ठ 13 संवेदना को छुए बिना न तो जीवन की विचित्रताओं से परिचित हो सकता है और न उसके मूल में कार्य कर रही शक्तियों से। कलाकार तो यों भी मूढ़ी होते हैं जो, और फिर राकेश जैसा कलाकार तो और भी सशक्त प्रतिमानों से ही माना जा सकता है। मोहन राकेश के जीवन में तो इतने परिवर्तन और उलटफेर हुए हैं कि उनकी तह तक पहुँचे बिना या कम से कम उनकी गहराइयों को जाने बिना न तो उनके व्यक्तित्व का सही विश्लेषण किया जा सकता है और न उनकी आदतों, रुचियों और प्रतिक्रियाओं का सही निर्णयात्मक हल ही ढूंढा जा सकता है। ऐसी स्थिति में तो और भी नहीं जबकि उसका व्यक्तित्व अंतर विरोधों से युक्त हो। राकेश मस्त प्रकृति के जीव थे, मन में आया तो जमे और जमते चले गए और यदि उचाट का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो उबते चले गए। अतः राकेश को उसके स्वभाव, संस्कार और रुचियों के तहत ही पूरी तरह देखा और पाया जा सकता है। राकेश के पास एक ओर तो प्रयोगशील व्यक्तित्व था, उसके अपने सपने थे, घर के सपने और घर से जुड़े सपनों के सहारे राकेश का जो बहुआयामी व्यक्तित्व निर्मित हुआ है उसमें विचित्रताएं ही विचित्रताएं हैं। अपनी प्रयोग गर्भिता के कारण ही राकेश न केवल साहित्य में वरन जिंदगी में भी प्रयोगरत रहे। साहित्य में पुरानी जमीन तोड़कर और जीवन में मानव संबंधों की कीमत पर, मूल्यों के ध्वंस पर। टूटने और बनने की यह प्रक्रिया अंतिम क्षणों तक चलती रही। राकेश जब प्रयोग के धरातल पर उतरे तो उन्होंने सामने वाली वस्तु को न देखकर अपितु उसकी असली नाड़ी की परख करके ही झुटलाया। स्वीकार और अस्वीकार, ग्रहण और त्याग तथा विरोध और सामंजस्य की यह प्रक्रिया रेल की समानांतर पटरियों की तरह राकेश के जीवन और साहित्य में देखी जा सकती है। वस्तुतः राकेश एक ऐसा कलाकार था जिसमें एक सांस में ही सब कुछ को नकारने की क्षमता थी, तो बहुत कुछ को एक साथ ही ग्रहण करने की शक्ति भी थी। उसकी यह क्षमता निरंतर अन्वेषणत होती रही, प्रयोग करती रही। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे राकेश के जीवन की कहानी विचित्र भी है और अकल्पनीय भी। कभी कभी लगता है कि राकेश की जिंदगी का यह वैचित्र्य बोध, यह अन्वेषणी स्वभाव ही उनके व्यक्तित्व का समर्थ पहलू भी है और यही उनकी दुर्बलता भी। आधुनिक बोध का यथार्थवाही चितेरा, कहानियों और उपन्यासों का थका हारा, किंतु संभावना कुल व्यक्ति और नाटकों में अंतर्मुख भाव वल्यती चेहरे वाला मोहन राकेश आधुनिक युग का मोहन भी था और राकेश भी। मोहन राकेश वर्तमान पीढ़ी के उन कृतिकारों में अन्यतम है जिन्होंने हिंदी रचना के आडंबर, कृत्रिमता, चमत्कार, सस्ती भावुकता और जुमलेबाजी से अलग पृष्ठ 14 करके एक आत्मीय रिश्ता प्रदान किया। यह आत्मीय रिश्ता रूढ़िवादिता से दूर है, उसमें संवेदना की आधुनिकता है, अनुभव की सच्चाई है और संप्रेषण का जीवित आधार है। राकेश ने जो लिखा वह सब जीवन की यथार्थ स्थितियों को स्वीकार है। उसमें व्यक्ति व्यक्ति का संबंध निरूपित है, सामाजिक विसंगतियों की सीमाहीन फैलाव और उसमें जकड़े आदमी की जीवंत तस्वीर है। अपने समकालीनों में राकेश सबसे जुड़कर भी सबसे अलग हैं। उनका यह अलगाव ही उसके साहित्य की उपलब्धि है। वस्तुतः राकेश ने जिस किसी भी विधा पर कलम चलाई उसे पूर्णत्व प्रदान करने का प्रयत्न किया। नाटककार से लेकर कहानीकार तक, उपन्यासकार से लेकर यात्रा संस्करण तक जिंदा दिली के साथ लिखते रहे। यद्यपि उन्होंने बहुत अधिक नहीं लिखा, कुल 4 नाटक, कुछ एकांकी, कुछ बीज नाटक व पार्श्व नाटक, 3 उपन्यास, लगभग 70 कहानियाँ, 1 यात्रा संस्मरण और कहानी, नाटक व समकालीन साहित्य की रचना प्रक्रिया व प्रवृत्तियों के विश्लेषित समीक्षित करने वाले निबंध। अपने लेखन से राकेश ने समकालीन हिंदी लेखन की गहराई के साथ प्रभावित किया है। उनका साहित्य उनकी अद्वितीय प्रतिभा और सृजनात्मक क्षमता का प्रमाण है। राकेश ने कथ्य के चयन और उसके अभिव्यंजन में कभी न तो जल्दबाजी की और न कभी कच्चा माल ही पाठकों को देने की भूल की। वे जो भी लिखते वह पूरी तरह उनकी आत्मा में रचकर ही साहित्य का रूप धारण करता था। यही कारण है कि उनका समूचा साहित्य कथ्य और शिल्प के संतुलन से का प्रमाण है। राकेश ने सदैव शिल्प को निखारते जाने में विश्वास किया। वे मानते थे कि जिस प्रकार अनुभूति का अभिव्यक्त होना एक सहज प्रक्रिया है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति का निरंतर परिष्कृत और विश्वसनीय होते जाना भी अनिवार्य है। विचार और अभिव्यक्ति के स्तर पर बराबर प्रयोगशील रहते हुए भी उन्होंने प्रासंगिकता और समकालीन की चुनौती को कभी भी अनदेखा नहीं किया। यह ठीक है कि राकेश ने शिल्प के प्रति सतर्कता बरती और वे निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करते रहे। उन्होंने अनुभूति के अनुकूल ही अभिव्यक्ति के नए माध्यमों की खोज की। राकेश एक सजग शिल्पी थे, आस्थावान रचनाकार थे और उनका समस्त लेखन गवाह है कि वे कभी भी अपने परिवेश से कटे नहीं। उससे कटकर लिखना न तो उन्हें अभीष्ट था और न ही उनके लिए संभव था। ध्यान से देखें तो राकेश का समस्त साहित्य परिवेश प्रतिबद्ध है। उसमें परिवेश की सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों का अंकन है। राकेश के साहित्य में निरूपित स्थितियों का सीधा संबंध यथार्थ से है और यह यथार्थ उनके समय और परिवेश का यथार्थ है। व्यक्ति से परिवार, परिवार पृष्ठ 15 से राष्ट्र और राष्ट्र से मानव समाज तक का पूरा परिवेश राकेश के साहित्य का जीवित आधार है। वे इसमें से किसी से भी कटकर या टूटकर नहीं जिए। फिर उनका सृजन इससे असंपृक्त कैसे रह सकता था? यही कारण है कि उनके साहित्य में निरूपित तथ्य किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है, वह तो उनके समय का है और समय में भी निरंतर बढ़ती हुई आकुलता, पीड़ा, यंत्रणा और असंतोष व विद्रोह की अभिव्यक्ति है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं जो मानस को उद्वेलित करती हुई भीतर से आदमी को छीले और वह राकेश की पकड़ से बाहर हो। राकेश के साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है परिवेश के प्रति सजगता और उसकी सफल और यथार्थ अभिव्यंजना। उन्होंने आज के बदले हुए परिवेश में एक इकाई के रूप में व्यक्ति की त्रासदी को गहराई से समझने का प्रयास किया है। यही कारण है कि राकेश ने अपनी रचनाओं से अपने समय के मानवीय संबंधों की गहनता, जटिलता और निरंतर गहराते जाते संकट व टूटते बनते व बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच व्यक्ति के निजी संबंधों को समझने और समझाने का सफल प्रयास किया है। आज सामाजिक संबंध तो बिखर ही गए हैं, निजी संबंधों के लिए भी संकट पैदा हो गया है। लगता है मानव मानव के संबंध एक ऐसे कगार पर खड़े हैं जहां से वे निरंतर समस्याओं के प्रवाह से मिट्टी की तरह ढहते बिखरते और अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। मनुष्य अकेला होता जा रहा है। कैसी विडंबना है कि समकालीन मनुष्य बाहर से सामाजिक दिखकर भी भीतर से बिल्कुल अकेला पड़ता गया है। उसका अकेलापन भीड़ में खड़े मनुष्य के का अकेलापन है। राकेश ने इस स्थिति को पहचाना था, भोगा था, अतः उन्होंने अपने कथा साहित्य में इस सब का विकसित अंकन बड़ी गहराई से किया है। स्त्री पुरुष के निजी संबंधों को, उनके बीच विकसित नए पीड़ा बोध, अलगाव और विघटन को जिस गहराई से राकेश ने समझा और अभिव्यक्त किया है, वैसे उनके समकालीनों में कोई नहीं कर सका। एक प्रकार से राकेश के कथा साहित्य का यह एक प्रमुख स्वर है और काफी सशक्त स्वर है। यह उनके साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उन्हें अपने समकालीनों से बिल्कुल पृथक महत्व प्रदान करती है।